शांति। तो हम सब के बीच में हमारी आदरणीय राजयोगिनी शीलू दीदी जी विराजमान है। हम रूहानियत की इत्र छिड़कते हुए, एक हाथ हिलाते हुए दीदी का स्वागत, सत्कार, अभिनंदन करते हैं। दीदी बाल्यकाल से ही इस ज्ञान मार्ग पर चल रहे हैं। मुंबई महानगरी से निकले आप ईश्वर के अनमोल रत्न हैं। और फिर 1969 में ग्रेजुएशन पूरा करके आप मधुबन में आए, टीचर्स ट्रेनिंग ली और बाबा ने आपको विविध स्थानों पर सेवा अर्थ भेजा, जैसे कि राजकोट, हैदराबाद, बैंगलोर, नेपाल, अफ्रीका, मॉरिशस आदि आदि स्थानों पर 1969 से लेकर 76 तक आप भ्रमण करते रहे, बाबा की सेवा करते रहे और कई स्थानों पर सेवा केंद्र खोलने के निमित्त बने। और फिर 76 में जब आप मधुबन आए, आते तो हर वर्ष थे लेकिन 76 में जब आए तो आपको गोल्डन लॉटरी मिली मधुबन निवासी बनने की। तो 1976 से लेकर आज दिन तक दीदी इस मधुबन धरनी पर रहकर सभी कॉम्प्लेक्स में, देश विदेश में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वर्तमान में आप हमारे राजयोग शिविर के डायरेक्टर हैं। हमारी जो एजुकेशन विंग है उसके आप वाइस चेयरपर्सन हैं। मधुबन में ये जो भट्टियां चलती हैं इसके आप कोऑर्डिनेटर हैं। और फिर जब विदेशी सीजन आरंभ होती है तो उनके प्रोग्राम्स के भी आप कोऑर्डिनेटर हैं। इसके साथ साथ आप इंटरनेशनल इंटरप्रेटर भी हैं। ट्रांसलेशन की सेवाएं बाबा की आप देखते हैं और बहुत ही गुणों से युक्त हैं। इन सब से बढ़कर मम्मा, बाबा और वरिष्ठ दादियों की जो पालना ली है, अब जब वे व्यक्त रूप में हमारे बीच में नहीं है तो उनकी पालना का रिटर्न स्वरूप आप सभी आने वाले भाई बहनों का बहुत प्यार से पालना करते हैं। तो ऐसी हमारी दीदी दादियों के समान जो है अभी हमारे बीच में है, हमें भट्टी का लक्ष्य और उद्देश्य बताएंगे। लक्ष्य और उद्देश्य तो बहुत बड़ा है लेकिन बड़े उद्देश्य को पाने के लिए छोटे छोटे लक्ष्य हासिल करने होते हैं। तो दीदी को विषय दिया है जो आज की मुरली में भी था, साइलेंस पावर। तो साइलेंस पावर पर प्रकाश डालते हुए दीदी भट्टी का लक्ष्य और उद्देश्य स्पष्ट करेंगे। सुनते हैं दीदी को, आदरणीय दीदी जी।
आप भी अपना परिचय दो।
शरीर का नाम इंदिरा बहन है। 1987 में ईश्वरीय ज्ञान मिला और फिर 1998 में ये जीवन ईश्वरीय सेवाओं के लिए समर्पित किया। समर्पित जीवन की यात्रा हेडक्वार्टर से ही आरंभ हुई। शुरू के 5 वर्ष ज्ञान सरोवर अकेडमी में, स्पार्क ऑफिस में सेवाएं दी कि जिन 5 वर्षों के अंदर बाबा ने इस आत्मा को निमित्त बनाया एक पुस्तक लिखने के, जो पुस्तक है मनोबल एवं मनसा सेवा। इतनी मोटी है, बाबा के महावाक्यों पर आधारित जो लिटरेचर में सेल होती है। उसके बाद चूंकि हम नागपुर सब जोन को बिलोंग करते हैं तो नागपुर सेवा केंद्र पर रहने का अवसर मिला। और चूंकि स्पार्क से जुड़े थे, मतलब रमेश भाई, उषा दीदी से जुड़े थे, तो नागपुर के बाद उन्होंने गामदेवी सेवा केंद्र पर रहने का अवसर दिया। और शुरुआत तो हेडक्वार्टर से हुई थी तो 2009 में पुनः हेडक्वार्टर में अवसर मिला और निमित्त बने शीलू दीदी। तो 2009 से शीलू दीदी के ग्लोबल ऑफिस में बैठकर जो उनकी सेवाएं हैं उन सेवाओं में हम अपना सहयोग देते हैं। ओम शांति।
ओम शांति। सर्वप्रथम तो आप सभी चंडीगढ़ निवासी भाई बहनों को हमारी तरफ से तो हम स्वागत करते ही हैं, लेकिन प्यारे बाप दादा, हमारी सर्व वरिष्ठ दादियाँ, सर्व मधुबन निवासी भाई बहनों की तरफ से आप सबका इस मधुबन तपोभूमि, वरदान भूमि, परिवर्तन भूमि, ब्रह्मा बाप की कर्म भूमि में बहुत 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 स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। अवश्य बहुत भाग्यशाली आत्माएं हो जो पांडव भवन में भट्ठी करने का आपको मौका मिला, और आप बारिश की सीजन में आए हो, बारिश की रिमझिम आपको अच्छी लगी या अच्छी नहीं लगी? अच्छी लगी। चंडीगढ़ में कैसा मौसम था? ठंडा था, गर्म था जी? अभी ठंडा हुआ था, फिर भी गर्मी तो होगी। पर यहाँ तो बहुत सुंदर इस समय का वातावरण है। जब ऊपर आए होंगे खूब हरियाली देखी होगी, हाँ, वो हरियाली भी मनभावन होती है, खास बरसात के दिनों में, और फॉगी तो होती ही है, और बादल भी देखे होंगे पहाड़ों पर, तो ऐसा वातावरण जिसको देखने के लिए दूर दूर से टूरिस्ट आते हैं। और आप सब तो यहाँ बाबा के घर में इस पवित्र वातावरण में रहकर अपने अंदर शक्ति भरने के लिए आए हैं। केवल घूमने तो नहीं आएंगे, आए हैं वो तो घूम करके चले जाएंगे जो पर्यटक होंगे, लेकिन हम तो बाबा के बच्चे यहाँ सागर के कंठे पर बादल भरने भी आते हैं और आत्मा की बैटरी चार्ज करने भी आते हैं। और भट्ठी का बैज तो सभी को मिल चुका होगा, पर आपने उसमें पढ़ा होगा, हाँ, क्या नाम दिया इस भट्ठी को? योग तपस्या भट्ठी संपन्नता की ओर। तो बहुत बड़ा लक्ष्य आपको दिया गया है कि हमें बाप समान संपन्न बनना है, लेकिन संपन्न बनने लिए, बाप समान बनने लिए हमें क्या करना होगा? जो बाबा ने किया वो हमें भी करना होगा, बाबा की कदमों पर चलना होगा। तो खास आज विषय लिया है साइलेंस पावर। ब्रह्मा बाबा अंतिम वर्षों में बहुत साइलेंस में चले गए थे, बाबा के सामने बात करने की भी हिम्मत नहीं होती थी, क्योंकि बाबा की स्थिति तो बहुत ऊंची थी। दादियों की भी हमने स्थिति देखी, जब अंतिम दिन उनके थे तो कैसी ऊंची स्थिति थी। ब्रह्मा बाबा का तो अनुभव है मुझे, मम्मा का भी अनुभव है, पर दादी जी का तो विशेष अनुभव है। मधुबन में रहकर दादी जी के अंग संग हम रहे, तो दादी तो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड थी, सारा कारोबार उनके हाथ में था, कितना ध्यान देना पड़ता था उनके ही सानिध्य में, कितनी सेवाएं हुई, चारों ओर सेवाएं बढ़ी। लेकिन अंतिम दिनों में दादी जी को हम देखते थे कैसे न्यारी प्यारी होती गई, न्यारी प्यारी, बिल्कुल न्यारी प्यारी। नहीं तो दादी जी के पास हम छोटी छोटी चीजें, बातें भी लेके जाते थे, लेकिन जब दादी का ऐसा समय आया तो जब दादी के सामने जाते थे तो लगता था ये छोटी छोटी बातें क्या दादी के आगे सुनाना, क्योंकि दादी की स्थिति तो बहुत ऊंची थी और दादी पूछते भी थे, हाँ कुछ कहना है? हम कहते थे नहीं दादी, बस आपकी दृष्टि लेने आए हैं, ऐसे इतना ही कहते थे। दादी जानकी को भी हमने देखा, दादी जानकी के भी कैसे अंतिम दिनों में कैसे वो भी न्यारी प्यारी होती गई। इतनी शक्ति बाबा ने उसको दी, कितनी सेवाएं भी की उन्होंने। वो यही कहती थी बस बाबा चला रहा है, और इतनी सेवाएं की और कैसे अंत में भी न्यारी प्यारी होती गई, वो भी अनुभव किया। तो सभी का ऐसा ही था। तो बाबा फिर अब हमसे भी यही चाहते हैं, क्योंकि समय तो बहुत कम है, समय कम है, मंजिल दूर है, तो हमको क्या करना पड़ेगा? कदम तेज करने पड़ेंगे ना, गीत भी है ना, मंजिल दूर है समय कम है, तो गति को तेज करनी है। तो तेज गति कैसे होगी? जब हम बाप दादा और दादियों को हम फॉलो करेंगे, और उसमें शांति की शक्ति बहुत बड़ा काम करती है। सबसे पहले तो शांति को लोग शक्ति भी भले समझते होंगे, लेकिन शांति की गहराई क्या होती है ये शायद जो शांति चाहते हैं उनको भी नहीं पता। हम कई बार लोगों से पूछते हैं आप शांति की परिभाषा बताइए, तो शांति सोचने लगते हैं शांति की परिभाषा क्या देंगे, तो कई कहते आवाज न होना वही शांति है, ऐसे ही समझते हैं। आवाज बहुत होता है तो कहेंगे भाई शांति शांति है, आवाज नहीं, तो आवाज न होना ही शांति है। या फिर कोई समझते हैं कि युद्ध न होना शांति है, या फिर कोई समझते हैं चलो रोटी कपड़ा मकान मिल जाए तो शांति हो जाए, आवश्यकता जीवन की मिल जाए तो शांति हो जाए। कोई समझते हैं कि जब सारे संसार में शांति हो तो हमारे में शांति आएगी, या संसार में मूल्य आ जाए तो शांति हो जाए। अब वो तो बहुत लंबी चौड़ी बातें कहते हैं, और हम क्या कहते हैं शांति क्या है? ये तो आत्मा का स्वधर्म है, आत्मा का स्वधर्म है, ये मेरे पास ही है। और कितनी दूरी पर है? एक सोच की दूरी पर है, इस ओम शांति की सोच यही दूरी पर है शांति। और फिर जब शांति को हम इंग्लिश में डिफाइन करते हैं तो कोई उसको पीस कहे, कोई उसको साइलेंस कहे, क्योंकि दोनों दो भाव हो जाते हैं शांति के, एक है पीस एक है साइलेंस। अब साइलेंस को किस रूप में लेते हैं, पीस को किस रूप में लेते हैं? साइलेंस को कई लेते हैं नो साउंड इज साइलेंस, लेकिन साइलेंस भी बहुत गहरी है। पीस के लिए हम कहते हैं कि भाई आत्मा का स्वधर्म है शांति, परम धाम में भी हम आत्मा शांत स्वरूप हैं, वो हमारा शांति धाम है, वहाँ साइलेंस भी है पीस भी है। तो साइलेंस को हम मोटे रूप में भी ले सकते हैं आवाज नहीं, लेकिन साइलेंस को हम पीस से भी ज़्यादा गहराई में ले जा सकते हैं, क्योंकि शांति एक बहुत बड़ी शक्ति है। आगे आ जाओ बहने, आगे आ जाओ, थोड़ा आगे आ जाओ, हाँ देखा आगे आओ ना, बहुत जगह है, भाई भी आगे आ जाए, इस तरफ हो जाए। शांति भी एक बहुत बड़ी शक्ति है, शांति केवल आवाज का अभाव नहीं है, शांति केवल युद्ध न होना ही नहीं है, पर शांति एक उपलब्धि है, एक प्राप्ति है, एक शक्ति है, जैसे एक पावर है। हम कहते ये प्रकाश है, तो प्रकाश की परिभाषा हम इस रूप में भी दे सकते हैं, अंधकार का अभाव प्रकाश है, अंधकार नहीं है, माना प्रकाश है, लेकिन ये सही परिभाषा नहीं होगी। हाँ, अंधकार की परिभाषा दे सकते हैं प्रकाश का अभाव, पर प्रकाश की परिभाषा तो ये नहीं दे सकते ना, अंधकार का अभाव, क्योंकि अंधकार का कोई स्रोत नहीं है। प्रकाश का तो स्रोत है, कहेंगे भाई सूरज उसका स्रोत है प्रकाश का। जैसे ही प्रकाश, सूरज उदय हुआ, प्रकाश फैला, अंधेरा खत्म। तो अंधेरा की परिभाषा प्रकाश का अभाव ये नहीं कहेंगे। इसी प्रकार शांति की परिभाषा केवल आवाज का अभाव ये नहीं कहेंगे। शांति का स्रोत है आत्मा, स्वयं शांत स्वरूप है परमात्मा, शांत स्वरूप है, शांति का सागर है वो, स्रोत है, सोर्स है शांति का, दाता है, और आत्मा भी उसका स्वरूप है। तो जब हम उस रूप से शांति सोचते हैं तो एक बहुत बड़ी शक्ति का अनुभव होता है। और बाबा साइलेंस पावर को कितनी मुरलियों में कितनी सुंदर व्याख्या कर चुके हैं। बाबा विज्ञान से भेंट करते हैं, विज्ञान में कितनी बड़ी शक्ति है। कल भी बाबा ने कहा कि देखो विज्ञान में कितनी बड़ी शक्ति है। अभी किसी का आवाज बहुत बड़ा हो तो एक टेप रिकॉर्डर और माइक, इसमें भी शक्ति है। अगर आवाज बड़ा है तो क्या करेगा, उसको कम कर सकते, वॉल्यूम कम कर सकते हैं, टेप मशीन में भी वॉल्यूम कम कर सकते, हाथ हमारे हाथ में है ना। पर मनुष्य कहे कि नहीं मेरी आवाज तो बहुत बड़ी है, मैं कम कैसे करूं। विज्ञान ये सब कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते, अपनी आवाज को कम नहीं कर सकते। विज्ञान के अंदर इतनी शक्ति है जो दूर की आवाज को नजदीक ला सकते हैं। हम मोबाइल पर बात करते हैं, अमेरिका में भी बात कर सकते हैं, वो कहां अमेरिका हजारों मील की दूरी पर, और यहां हम वो आवाज सुनते हैं उनकी, तो यहां आवाज वो पहुंचती है, इतना नजदीक हमको अनुभव होता है। जैसे मेरे सामने वो बात कर रहा है, भले वो हजारों मील दूरी पर हो, तो दूर की चीज को नजदीक ले आते हैं। दृश्य जो दूर के हैं उनको नजदीक ले आता है साइंस। हाँ, टीवी खोलो और अमेरिका देखो, लंदन देखो, ये देखो, वो देखो, आज वहां हुआ, ये हुआ, वो हुआ, जो कल आज अभी घटना हुई अभी टीवी पर आ गया वो न्यूज। हालांकि हम उस दृश्य से या उस स्थान से तो बहुत दूर होंगे, लेकिन वो सामने दिखाई देता है। ऑडियो विजुअल, ये दोनों शक्ति जो विज्ञान में है हम अनुभव करते हैं, तो कितनी बड़ी शक्ति है। तो क्या हम उस साइलेंस पावर से दूर की आवाज कैच कर सकते हैं, दूर का दृश्य देख सकते हैं? विज्ञान ने तो दिखा दिया। तो हम उस साइलेंस पावर से, जबकि साइलेंस साइंस से ऊंची है, यही कहते हैं ना विज्ञान, वैज्ञानिक भी अपनी जो खोज करते हैं या जो भी आविष्कार करते हैं वो भी कितनी साइलेंस में जाकर के करते हैं, अंडरग्राउंड चले जाते हैं एकदम एकांत में, साइलेंस में। तो हमारी शक्ति तो साइंस से भी ज्यादा ऊंची है। और जब बाबा कई बार कहते हैं कि इतनी आत्माओं की पुकार है, इतने दुखी है, तो बाबा ने कहा कि दुखों के तो पहाड़ गिरने वाले हैं, और भी कितने दुख दर्द दुनिया में बढ़ते ही जा रहे हैं। तो विज्ञान की शक्ति तो उस रूप में मदद करती है। बहुत दर्द है शरीर में, एक पेन किलर मिल जाता है तो दर्द गायब। बहुत दर्द है वो मैग्नेट थेरेपी करते हैं या मशीनों से फिजियोथेरेपी करते हैं, वो दर्द गायब। तो उस दर्द को गायब करने के लिए विज्ञान कितना मददगार है। हमारे दुख दर्द को मिटाने में मददगार है। ऑपरेशन इतना बड़ा हो रहा है और वो एनेस्थीसिया दे दिया, जैसे बेहोश कर दिया, और इतना बड़ा ऑपरेशन भी होता है पता ही नहीं चलता। तो क्या हम शांति की शक्ति से वो अनुभव कर सकते हैं? वो तो एनेस्थीसिया दे करके बेहोश करेंगे, क्या हम अशरीरी बन सकते हैं? जो चाहे कितना भी वातावरण कैसा भी हो, हम उनसे न्यारे हो जाएं, क्या ये हो सकते हैं? तो अशरीरी स्थिति में जो साइलेंस का अनुभव हम करते हैं, उसमें इतनी शक्ति है कि जैसे देखते हुए भी नहीं देखते, सुनते हुए भी नहीं सुनते। नहीं तो लोग कहते ना, ऐसे कैसे होगा, सुन रहे हैं ना, सुनाई तो देता है, कैसे कहेंगे सुनते हुए ना सुने, देख रहे हैं, ऐसे कैसे कहेंगे देखते हुए नहीं देखे, आंखें बंद थोड़ी कर सकते, आंखें तो बंद नहीं करनी है, कान भी बंद नहीं करने हैं, और किसी को हम रोक भी नहीं सकते हैं, कोई बोल रहा है हम उसको मना भी नहीं कर सकते, मत बोलो, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, किसको भी कुछ भी बोल देते हैं आज की दुनिया में, हाँ डरते नहीं हैं, बोल देते हैं, फिर भले बाद में कुछ भी हो लेकिन उस समय तो भड़क जाते और ऐसे शब्द बोल देते हैं, तो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, तो आप किसी के बोल को रोक तो सकते नहीं हो। कोई मेरी ग्लानी कर रहा है, निंदा कर रहा है, आप उसको कहो आप मुझे मत ऐसे कहो, कहेगा कहूंगा, कौन होते आप, क्या करोगे आप, पुलिस में रिपोर्ट करेंगे, मानहानि का केस दर्ज करेंगे, वो कहेगा मैंने कहा ही नहीं, क्या प्रूफ है, फिर या तो वो टेप में रिकॉर्ड करो है ना, वो बहुत कुछ ऐसे पकड़ते हैं ना। तो ये विज्ञान तो बहुत मदद करता है, लेकिन क्या हम वो साइलेंस की शक्ति से जो आत्माओं की पुकार है, बाबा कहते वो पुकार सुनाई देती है। कई भविष्य वक्ताएं होकर के गए हैं जिन्होंने भविष्य बताया, बहुत आजकल चल रहा है, कितना आता है, नॉस्ट्राडेमस जिसने 550 साल पहले इस समय के वातावरण का वर्णन किया है, कईयों का नाम आता है, भविष्यवाणियां करते हैं। तो क्या हम वो जो भविष्य में आने वाला है, क्या हम उस दृश्य को आज देख सकते हैं? जो बीत गया उसके लिए भी विज्ञान आज बता रहा है, महाभारत लड़ाई लगी थी 5000 साल पहले, वो तो उस रूप से समझते हैं, तो वो आवाज जो उस समय भगवान ने कहा था, वो आवाज आज अब कैच कर सकते हैं। लेकिन बाबा तो बताते तो है ही चक्र 5000 साल का भी, फिर भगवान ये ज्ञान दे रहे हैं, अभी वही महाभारत लड़ाई है, लेकिन विज्ञान कितना आगे बढ़ गया है, इतनी गहराई में जाता है, तो साइंस इतनी गहराई में जाता है, तो क्या साइलेंस भी इतनी गहराई में हम जाते हैं? साइलेंस की ऐसे साइलेंट हो जाए, ऐसे शांत हो जाए, जो कुछ भी हमें दिखाई न दे, कुछ भी और सुनाई न दे, आवाज से एकदम परे हो जाएं। जैसे बाबा परमधाम का वर्णन करते हैं, परमधाम में कोई चुरपुर नहीं है, कोई आवाज नहीं है, आज भी बाबा ने कहा टॉकी मूवी और साइलेंस, ये दुनिया तो टॉकी दुनिया है, आवाज की दुनिया है, 5 तत्वों की दुनिया है, हलचल की दुनिया है, लेकिन सूक्ष्म वतन में जाइए वहां हलचल है, चलता चलना फिरना अनुभव होता है, देख भी सकते हैं सूक्ष्म शरीर में, लेकिन आवाज नहीं है। पहले जमाने में वो मूवी फिल्में होती थी, मूवी खाली होंठ हिलते थे, पता है ना, वाट बाबा ने मुरली में कहा, आवाज नहीं होती थी, बस मूवी, इसलिए उसका नाम ही मूवी रख दिया, मूवी माना खाली होंठ हिलना बस। तो टॉकी मूवी और फिर साइलेंस, और परम धाम में जाओ तो वो आवाज तो क्या, वो होठों का मूवमेंट भी नहीं, बस बिल्कुल साइलेंस, आत्मा अपने शांत स्वरूप में। फिर उसको कई नाम दे दिए, डेड साइलेंस भी कहते हैं, डीप साइलेंस भी कहते हैं, स्वीट साइलेंस भी कहते हैं, है ना, पिन ड्रॉप साइलेंस कहते हैं, एक सुई भी गिरे तो भी आवाज हो, इतनी साइलेंस। तो वो साइलेंस क्या हम कहां तक अनुभव कर रहे हैं। बाबा एक मिसाल भी देते हैं, एक फिल्म आई थी मैं चुप रहूंगी, मैं चुप रहूंगी, तो कोई भी परिस्थिति आ जाए पर मुझे बोलना नहीं है, क्या ये मेरे से हो सकता है, मेरी जुबान मेरे कंट्रोल में आ सकती है, मुख का मौन रख सकते हैं। अगर मुख का मौन रख सकते हैं तो धीरे धीरे मन का मौन भी रख सकेंगे, और उसी मन के मौन को साइलेंस कहते हैं। पर पहले मुख का तो मौन हो। क्या हम अपनी वाचा को रोक सकते हैं, या उत्तेजना आ जाएगी, या ऐसे भावुक हो जाएंगे, रोने लग जाएंगे, चिल्लाने लग जाएंगे, या जोर जोर से हंसने लग जाएंगे। हाँ, भावनाएं तो कई प्रकार की होती है, इमोशंस जिसको कहते हैं, वो कई प्रकार की इमोशंस है, 16 प्रकार की इमोशंस बताते हैं, और कई लोग तो सारे दिन में ये सब प्रकार के इमोशंस दिखाएंगे। अब कभी तो बहुत जोर से हंसते हैं, कभी बहुत जोर से रोएंगे, कभी तो चिल्लाते हैं, कभी तो एकदम ऐसे शांत में चले जाएंगे, कोई बात करेगा तो भी जवाब नहीं देंगे, कोई क्या कोई क्या। लेकिन योगी की स्थिति कैसे होती है, एक रस, योगी के अंग शीतल होते हैं और स्थिति एक रस होती है, वो मूड नहीं बदलता है। मूड क्यों बदलते हैं, क्योंकि संकल्प ऐसे होते हैं, जैसे संकल्प होंगे वैसी हमारी स्थिति बनती है, वैसे ही हम वाइब्रेशंस फैलाते हैं, वैसे ही हमारी भावनाएं बनती है, दृष्टि बनती है, फिर वैसे ही बोल निकलते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है ना, जो आपको बोलना नहीं है वो सोचना भी नहीं है, लेकिन सोचेंगे तो जरूर बोलेंगे। तो जो बोलना नहीं है वो सोचना भी नहीं है, जो करना नहीं है वो बोलना भी नहीं है। कई बार बोल देते पर करते हैं नहीं, तो करना नहीं है तो बोलना भी नहीं है। और जो करते हैं वो आदतें बन जाती है, तो आदत कोई बनानी नहीं है तो एक बार भी नहीं करना है। कोई कहे कोई बात नहीं, एक बार कर लिया, सिगरेट पी लिया, है ना, दुनिया में तो यही है, एक बार थोड़ी सी शराब पी ली आदत थोड़ी बनेगी, पर एक बार चस्का ले लिया तो क्या होता है, वो आदत कब बन जाएगी, कैसे बन जाएगी पता भी नहीं चलेगा। तो जो आदत नहीं बनानी है तो वो एक बार भी क्यों, और आदत बनते बनते वो व्यक्तित्व बन जाता है। अगर उस प्रकार का व्यक्तित्व नहीं बनाना है तो फिर आदत भी वो क्यों डालनी है, और जैसा व्यक्तित्व होगा वैसा भाग्य बनेगा। तो कैसा भाग्य हम चाहते हैं, इसीलिए कहा जाता है आप जो सोचते हो वो ही बनते हो, यू आर योर थॉट्स, आपके संकल्प आपको कहां तक पहुंचा देते हैं। तो अगर भाग्य श्रेष्ठ चाहते हो तो अपना व्यक्तित्व भी श्रेष्ठ बनाओ, व्यक्तित्व श्रेष्ठ बनाना चाहते हो तो आदतें श्रेष्ठ बनाओ, आदतें श्रेष्ठ बनाना चाहते हो तो कर्म भी श्रेष्ठ करो, कर्म श्रेष्ठ बनाना चाहते हो तो बोल भी श्रेष्ठ हो, और बोल श्रेष्ठ बनाना चाहते हो तो सोच भी श्रेष्ठ हो। तो सोच से जीवन की डेस्टिनी, वो हमारा भाग्य, उसके बीच में कितनी बातें हैं। तो शुरुआत हमारी सोच पर है। तो बाबा भी जो हमें राजयोग सिखाते हैं वो सोच में ही परिवर्तन लाते हैं ना। जो पहले देह को देखने की आदत थी बाबा ने परिवर्तित कर दी, देख देह को देखो ही नहीं, अगर देखना भी है तो केवल भ्रकुटी पर ही देखो और कहीं नहीं देखो, भ्रकुटी पर आत्मा चमक रही है बस। क्योंकि जैसे शरीर को और नीचे देखते जाएंगे सतो से रजो, रजो से तमो स्थिति हो जाएगी, इसलिए बस सबके उस मस्तिष्क पर आत्मा चमक रही है। तो धर्म भेद, भाषा भेद, रंग भेद, प्रांत भेद, देश भेद, ये सारे जो भेद आज दुनिया में है ना, ये सब समाप्त हो जाएंगे क्योंकि हम सब आत्माएं हैं। तो उस हिसाब से हमारी सोच बाबा ने सबसे पहले ऊंची बनाई, खुद को भी आत्मा देखो, दूसरों को भी आत्मा देखो, भाई भाई देखो। उस सोच से क्या होगा, जितनी भी नेगेटिविटी है वो सब खत्म हो जाएगी, सब खत्म हो जाएगी। तो नेगेटिविटी हमारी खत्म हो गई, ऑटोमेटिकली हमारी दृष्टि भी शुद्ध हो जाएगी, हमारी भावनाएं भी शुद्ध हो जाएगी, हमारा सब कुछ शुद्ध हो जाएगा। तो इसीलिए जड़ उसकी क्या है, हमारी सोच। और सोच परिवर्तन बाबा ने कैसे की, आत्मा का ज्ञान दे करके। दुनिया में भी देख कहते आत्माएं, लेकिन फिर क्या कह देते, आत्मा सो परमात्मा, फिर सबको ईश्वर देखो, सबको परमात्मा देखो, परमात्मा सब जगह देखो। वो तो कहाँ देखते, सब जगह परमात्मा देखे तो संसार स्वर्ग न बन जाए, तेरा मेरा सब खत्म हो जाए ना, सब ईश्वर ही ईश्वर है। लेकिन वैसे तो ये है नहीं, लेकिन बाबा कहते हैं भले आत्मा देखो, पर ये आत्मा भी शिव बाबा की संतान है, शिव बाबा का बच्चा है। जब शिव बाबा इस सृष्टि पर आए तो सबसे पहले आत्मा का ही ज्ञान दिया, परमात्मा का ज्ञान नहीं दिया उस समय, ये शिव बाबा का पता नहीं था आत्मा। और यही सबको लगन थी, सबको आत्मा देखना, आत्मा देखना। ब्रह्मा बाबा ने खुद ही अभ्यास किया, यशोदा आत्माएं बाबा की लौकिक युगल, ये आत्माएं राधिका बाबा की बहू, ये आत्माएं, ये आत्माएं, आत्माएं। और जो भी आए यज्ञ में समर्पित हुए, लौकिकता तो खत्म ही हो गई, मम्मा मम्मा कहलाई तो मम्मा की लौकिक माँ भी मम्मा को मम्मा कहने लगी, लौकिक माँ अपनी बेटी को मम्मा कहे। बाबा की लौकिक युगल थी, बाबा को वो बाबा कहे, कहाँ पति कहाँ पिता, और वो कहाँ पत्नी कहाँ बच्ची। तो बाबा के लिए तो सब बच्चे हो गए, सब बच्चे हो गए, केवल एक जो लौकिक बच्चे वो ही नहीं, सब बच्चे हो गए। बाबा तो बच्चे 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 इतना कहते थे कि सबको बच्चे कहते थे, वो बंदर को ही बच्चे कहेंगे, हाँ देखो बच्चा आया है, उसको वहां से हटाओ क्योंकि वो फल खा रहे हैं। एक सांप आ गया, हाँ बाबा ने कहा ये देखो ये बच्चा, इनको इनको संभालो, हाँ इनको कैसे पकड़ो, मारो नहीं, तो वो कोई बच्चा का। एक चिड़िया आती थी, बुलबुल आती थी रोज बाबा के पास 11 बजे, और एक दिन वो नहीं आई, आज बच्ची क्यों नहीं आई, तो किसने कहा बाबा कौन सी बच्ची। हाँ, वो बुलबुल, तो बाबा के लिए बुलबुल भी बच्ची थी, बंदर भी बच्चे ही थे, सब बच्चे थे ना, क्योंकि प्रजा पिता ना, सारी प्रजा का पिता, सारी मनुष्य सृष्टि का पिता। तो कहा वो हद जो थी ना, वो सब बदल गई, हद बेहद हो गया। तो बाबा भी जब हमें आत्मिक दृष्टि से देखते हैं तो सब हदें खत्म। लौकिक में तो दुनिया में कितनी हदें हैं, कोई भी संस्था होती है तो उसमें भी कितनी हदें होती है। जो गुरु होगा वो सोचेगा मेरा भाई का बेटा बैठे, मेरा बेटा बैठे गद्दी पर। संस्थाओं में भी हम देखते हैं भाई भतीजावाद है, पर यहाँ तो कोई भाई भतीजावाद नहीं, बाबा की लौकिक बेटी भी थी निर्मल शांता दादी, और भी कई थे, लौकिक में भी संबंध था, लेकिन बाबा ने फिर भी दादी प्रकाशमणि को चुना। लौकिक संबंध नहीं था, पर फिर भी योग्यता अनुसार चुना, केवल संबंध अनुसार नहीं। तो बाबा ने योग्यता देखी, गुण देखे, उस आत्मा की स्थिति देखी, उसके अनुसार वो सेवाएं में हुई। तो हम देखते हैं कि बाबा ने कैसे सब हदों को पार कर दिया एक सेकेंड में। परिवार को छोड़ा नहीं, इसलिए बाबा कहते छोड़ो नहीं, ये संसार तो परिवार ही है ना, भगवान का भी इतना बड़ा परिवार है, सब बचरे वाले हैं भगवान, कितने बच्चे हैं भगवान के। तो परिवार तो इस दुनिया का ये एक नियम है, लेकिन पहले पवित्र प्रवृत्ति फिर अपवित्र प्रवृत्ति बनती है। निवृत्ति मार्ग तो बीच में एक शाखा बन गई दुनिया को थमाने के लिए, लेकिन वो नॉर्मल रूटीन नहीं है निवृत्ति, प्रवृत्ति ही नॉर्मल है इस संसार में, लेकिन पवित्र और अपवित्र। तो बाबा ने कैसे इस प्रवृत्ति को ही बदल दिया, दोनों साथ में रहो और पवित्र रहो, बीच में ज्ञान तलवार रखो, इसलिए छोड़ो कुछ भी नहीं पर फंसो कहीं भी नहीं। एक कला सिखा दी, ये भी एक कला है, छोड़ना कुछ भी नहीं है, फंसना कहीं भी नहीं है। तो न कुछ छोड़ो, न कहीं फंसो, न कुछ नया जोड़ो, वो भी नहीं, क्योंकि समय कम है, नया जोड़ेंगे फिर इसको कब खत्म करेंगे, इसलिए नया भी कुछ मत जोड़ो, केवल निभाओ, क्योंकि ये सब कितने जन्मों का कर्मों का हिसाब किताब है, कहाँ छोड़ के जाएंगे, और फंसेंगे तो कब इसको खत्म करेंगे, क्योंकि खत्म करके तो जाना ही है। और आत्मा के पाठ से सब कितना सहज हो जाता है, और जब वो स्थिति हमारी बनती है तो आत्मा साइलेंस में चली जाती है। देह अभिमान में आते तो कितना आवाज में आते, आवाज ही आवाज, आवाज ही आवाज, और जैसे आत्म स्थिति बनी आत्मा आवाज से परे चली गई। तो इसीलिए बाबा हमेशा कहते हैं घर को याद करो फिर नई दुनिया को याद करो, देह से देह के सब संबंधों को भूलो, मुझे याद करो। तो बाबा की याद से वो जो शक्ति आत्मा को मिलती है, उस शक्ति से हम अपने वास्तविक स्वरूप को तो पहचानते ही अनुभव करते ही हैं, और साथ साथ जो बाबा से प्राप्ति हमें होनी है वो भी अनुभव होती है। आज फिर बाबा ने ये भी साथ में कहा, देह अभिमान जब छोड़ते हैं तब हम अनुभव करते हैं प्राप्तियों को। प्राप्तियां याद है तो बाबा से सच्ची प्रीत अनुभव होती है, बाबा इतना देने वाला है। मनुष्य तो स्वार्थी होते हैं, और चाहिए और चाहिए और चाहिए, पर भगवान हमें खुला दिल से सब कुछ दे रहा है, कोई भी अप्राप्त वस्तु नहीं। तो हम, हमारा कितना प्यार है बाबा से, हम अपने आप से पूछें, हम प्यार का रिटर्न क्या दे रहे हैं बाबा को, बाबा तो कितना प्यार कर रहे हैं, पर हमारा रिटर्न क्या होगा, जो बाबा की श्रीमत हमें मिलती है उसका हम पालन करें। तो बाबा कहते बच्चे देह से देह के सब संबंधों को भूलो, गीता में तो यही है, मुख्य मेन तो यही है, सर्वधर्मान परित्यज मामेकं शरणं व्रज। तो देह सहित देह के सब धर्मों को भूलो, संबंधों को भूलो, मेरा तेरा भूलो, सब संबंध मेरे से जोड़ो, मुझे ही याद करो, यही तो राजयोग है। और उसके लिए आत्म अभिमानी बनो, पहले देही अभिमानी बनो, फिर विदेही बनो, फिर अशरीरी बनो, तीनों में अंतर है ना, अंतर है, एक ही बात है। देही अभिमानी बनना विदेही बनना अशरीरी बनना तीनों एक ही चीज है या अलग अलग है? अलग अलग है। देही अभिमानी बाबा कहते हैं कर्म करते देही अभिमानी होकर कर सकते हो। जब बाबा कहते हैं ना मैं आत्मा इन आंखों से देख रही हूं, मुख से बोल रही हूं, कानों से सुन रही हूं, ये देही अभिमानी स्थिति है। मैं आत्मा करता इस शरीर की इंद्रियों द्वारा करवा रही हूं, ये देही अभिमानी स्थिति है। और न चाहूं तो न्यारी हो जाऊं। क्यों नहीं न्यारी हो सकती हूं? जरूर हो सकती हूं। न चाहूं तो न देखूं, देखते हुए न देखूं, ये मेरे पास अधिकार है, मैं मालिक हूं। परंतु अगर ये आत्मा का अनुभव है ही नहीं, देह अभिमान है, तो कहेंगे ऐसे कैसे होगा, ऐसे कैसे होगा। देखेंगे न जरूर, सुनेंगे न जरूर, कैसे नहीं सुनेंगे, कैसे नहीं देखेंगे। लेकिन ये सब मेरे साधन है, हम इनसे न्यारे हो सकते हैं, बंद नहीं कर सकते। आंखें भी बंद नहीं करनी है, कान भी बंद करने की जरूरत नहीं है, पर न सुने न देखें, नहीं बोलना नहीं बोले, नहीं सोचना है नहीं सोचे, इसको कहेंगे देही अभिमानी स्थिति, आत्म अभिमानी स्थिति। और वो आत्म अभिमानी स्थिति जैसे हमारी होती है तो धीरे धीरे कैसे साक्षी दृष्टा भी बन सकते हैं। जो करता है वो अपने आप वही पाएगा, ये क्यों कर रहा है, ये कैसे कर रहा है, क्या कर रहा है, नहीं करना चाहिए, हाँ बाबा ने कहा ना कल भी। अब जो करेगा पाएगा, उसको पता है। इसीलिए हमारे मन में प्रश्न क्यों उठने चाहिए, तो भी तो मन अशांत हो जाएगा ना। किसी ने बहुत अच्छी बात कही कि अगर हम जब क्रोध करते हैं किस पर, तो उसकी गलती है तो उस गलती के कारण क्रोध करते हैं, लेकिन क्रोध करते हैं तो वो जैसे उसको नहीं हम कुछ कर रहे हैं, हम खुद को सजा दे रहे हैं। क्रोध करके हम खुद को सजा दे रहे हैं। कैसे? हाँ, क्रोध करेंगे तो ऑटोमेटिकली खून तो सूखता है ना, तो ऐसा हम अपने आप को सजा क्यों दे, उसने तो कर्म किया। कल बाबा ने बहुत अच्छी बात कही थी, अब कोई झूठ बोलता है और हमको गुस्सा आता है, इसने झूठ क्यों बोला? अच्छा, उसने झूठ बोला और आपने क्रोध किया, दोनों में से राइट कौन है? कौन राइट? दोनों ही गलत। झूठ बोलने वाला तो गलत है ही है, पर क्रोध करने वाला कौन सा सही है? तो हम एक उदाहरण देते हैं, एक बच्चा है, अब वो बच्चा खेल रहा है और अचानक शीशे का कोई ग्लास है या आवाज है कुछ भी, और उसके हाथ से गिर गया और वो टूट गया। आवाज तो हुई बहुत, माँ ने दूर से देखा नहीं, लेकिन आवाज हुई और वो भागती हुई आई, तो उसको लगा बच्चे ने किया होगा। अब बच्चे को इतना डांटती है, बेटा ये तुमने किया, सच बताओ। और उसके उसके सिर पर वो हाथ रखा। अब ये कहेगा हाँ मम्मी मैंने किया, तो पड़ेगी थप्पड़। हाँ, अब पड़ेगी थप्पड़ और कहती सच बताओ, तुमने किया, तुमने किया, ऐसे हाथ चलाएगी, वो हाथ दिखाएगी। अब बच्चा सच बोले या झूठ? हाँ? उसको अपनी रक्षा करनी है तो क्या करेगा? झूठ बोल देगा। तो झूठ बोलवाने के निमित्त कौन बनी? माँ बनी। बच्चा तो सच्चा होता है, अगर वो प्यार से पूछती ना, बेटा सच बताओ तुमने किया ना, कोई बात नहीं मैं कुछ नहीं करूंगी, खाली बताओ, मैं कुछ नहीं कहूंगी, हाँ मम्मी मैंने किया। पर कई बच्चे माँ से बहुत डरते हैं क्योंकि माँ मारती है। अब माँ को झूठ बताया लेकिन अंदर में तो सच्चाई है ना, तो मन तो खाएगा। तो जाके पिताजी उनको बहुत प्यार करते, तो कहेगा डैडी मैंने तोड़ा, लेकिन मम्मी को नहीं बताना। मम्मी को नहीं बताना, मम्मी मारती है। तो डैडी कहेगा कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। अब ये माँ भी तो कह सकती थी ना। लेकिन माँ थप्पड़ लगाएगी, फिर कहेगी बच्चा सुधरेगा कैसे? अरे ऐसे थोड़ी सुधरता है, ऐसे तो नहीं सुधरता है, वो तो डीठ बन जाएगा। क्योंकि ऐसे सोचेंगे सुधरेगा तो सुधरेगा थोड़ी, मारती रहेगी तो क्या बन जाता है बच्चा, ढीठ बन जाता है एकदम, स्टबन, नहीं करता हूँ जाओ बड़ा हो करके तो वो तो और भी ऐसा हो जाएगा। लेकिन प्यार भी देना है, आंख भी दिखानी है, सांप भी मरे और लाठी भी न टूटे। पर ये कैसे संभव होगा जब मन में उनके प्रति कोई भी बुरी भावना नहीं है। परंतु वो तब संभव हो जब उसको आत्मा देखे, ये बड़ी बात है। तो इसीलिए बाबा कहते देही अभिमानी। मैं किसी ट्रेन में सफर कर रही थी तो वहां एक माता बैठी थी, उसका 6 महीने का बच्चा होगा, 6 महीना 1 साल का बच्चा होगा, तो गोद में उसको रखा था। अब अचानक उस बच्चे ने रोया होगा, पर माँ भी कहाँ क्या करे तो चुप करा रही, और बच्चे को बाथरूम लगा होगा, अब वो माँ ने समझा ही नहीं और बात पेशाब कर लिया। इतना गुस्सा आया माँ को, उसको ऐसे मारो ऐसे, मारती रही मारती रही। तो मेरे पास में बैठी थी तो मैंने कहा माता जी इतना क्यों मार रहे, बेचारे 1 साल का बच्चा होगा, क्यों मार रही हो? तो पहले तो कहा कि देखो उसने पेशाब कर लिया, अरे वो छोटा बच्चा है तो आपका फर्ज है ना संभालना। लेकिन फिर जब मैंने कहा देखो माता जी ऐसे नहीं मारते, तो मेरे पर ही गुस्सा करने लगी, मेरे को कहती है तुम्हारा क्या जाता है, मेरा बच्चा है, तुम्हारा क्या जाता है, हाँ तुम कौन होती हो कहने वाली कि बच्चे को कि मेरा बच्चा है ना, तो मेरा बच्चा है तो मैं जो चाहूं सो करूं ना, मेरा अधिकार है। और देखो बाबा हमें क्या कहते हैं, उसको आत्मा देखो ना, ये आत्मा कितनी प्यारी है, कितनी मीठी है। तो गुस्सा तो नहीं आएगा ना, चलो कोई भूल कर भी दे। अब छोटे बच्चे को क्या पता, वो तो रो रहा था, तो माँ समझदार हो ना जो भाई उसको ले जाए। तो कहने का भाव है कि देही अभिमानी स्थिति माना वो आत्मिक स्थिति। फिर विदेही स्थिति, विदेही स्थिति किसको कहेंगे, उसमें भी आत्मिक स्थिति तो है ही, लेकिन विदेही स्थिति माना देखते हुए भी मेरा नहीं है। जिसको राजा जनक का समान मिसाल देते हैं कि राजा जनक इतने बड़े महल में रहता था लेकिन विदेही राजा था, महल में रहते हुए भी महल का मोह नहीं था। महल का मोह नहीं होना ये भी एक बहुत बड़ी शक्ति है। सब कुछ होते हुए भी उसमें मोह नहीं होना, सब कुछ करते हुए उसमें फंसना नहीं, गृहस्थी नहीं हूं ट्रस्टी हूं जो बाबा कहते हैं, ये तब अनुभव हो जब हम पहले देही अभिमानी बनते हैं। तो देही अभिमानी, फिर विदेही स्थिति, और फिर अशरीरी। और अशरीरी को बाबा कहते हैं बिल्कुल साइलेंस की शक्ति। और वो साइलेंस की शक्ति जब आत्मा बीज रूप में परम धाम में स्थित है, बिल्कुल साइलेंट, पर सारा सार आत्मा के अंदर है, जैसे बीज के अंदर पूरे वृक्ष का सार है। तो आत्मा सभी गुणों की जो मूल रूप में अनुभूति उसको है परम धाम में, वो स्वरूप, वो साइलेंस की शक्ति है। साइलेंस कोई ऐसे निरी, कोई खाली नहीं है, लेकिन उसमें जो आत्मा के मूल गुण है, सातों गुण, ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद, शक्ति, ये सारे गुण आत्मा के उस समय अनुभव हो साइलेंस पावर में। क्योंकि ये जितने भी गुण हैं आत्मा के, ये सब बहुत बड़ी शक्ति बन जाते हैं। नॉलेज इज पावर कहते, ज्ञान की भी शक्ति है, प्रेम की भी शक्ति है। प्रेम है तो पत्थर को ही पानी कर देते हैं, ये प्रेम की शक्ति है। आनंद शब्द तो चरम स्वरूप है, सुख का, खुशी का, आनंद चरम स्वरूप है ना। जितने भी जो भी संत महात्माएं हैं उनको जो नाम मिलते हैं जब साधु बनते या महात्मा बनते गुरु बनते सन्यासी बनते हैं तो उनको जो नाम मिलते हैं तो सब नामों में के अंत में आनंद आता है। सच्चिदानंद स्वामी, सत्यानंद स्वामी, विवेकानंद, धर्मानंद, तो अंत में आनंद। और सबसे ऊंचा आनंद परमानंद। सबसे ऊंचा आनंद कौन सा है? परमानंद या शिवानंद जो कहो, सबसे ऊंचा आनंद। उस आनंद की स्थिति में आत्मा है तो कंप्लीट साइलेंस। आवाज से तो दूर, लेकिन नेगेटिव से भी दूर, व्यर्थ से भी दूर। संकल्प तो है, एक स्वीट साइलेंस है। वो आनंदमय स्थिति है बाबा की याद में, एक बाबा दूसरा न कोई, उस प्रेम में खोए हुए हैं। वो साइलेंस की शक्ति है जो बाबा ने कल भी कहा। कीर्ति गाते हैं, कीर्तन करते हैं, तो कीर्तन क्या है? कीर्ति गाना। तो हम योग को क्या कहते हैं? राजयोग क्या है? शिव बाबा की महिमा ही गाते हैं। शिव बाबा तू शांति का सागर है, मैं आत्मा आपकी संतान शांत स्वरूप हूं, हो जाओ शांत, एकदम शांत। तो शिव बाबा की स्तुति तो गाते हैं, लेकिन उस स्तुति का हम स्वरूप बन जाते हैं। फिर केवल गाते नहीं है, भक्ति मार्ग में स्तुति गाते हैं। कीर्तन मानस कीर्ति, स्तुति गाना। पर वो कीर्ति गाते गाते कुछ मांग लेते हैं। हे प्रभु, आप दयालु हो, कृपालु हो, रहम दिलो, मुझ पर थोड़ी कृपा करो। अब जैसे भगवान को याद दिला रहे हैं कि उनका कर्तव्य क्या है, आप ये हो और मुझ पर ये, मुझे ये दो। और बाबा कहते हैं तो क्या मुझे पता नहीं है क्या मुझे देना है? मुझे याद दिला रहे हो, है ना? कोई बड़ा व्यक्ति होता है ना, आप पहले अभी उनसे काम लेना है तो क्या करेंगे? सीधा ही नहीं कहेंगे कि ये मेरा काम है, ये काम है। पहले जाकर के उसकी खूब स्तुति गाएंगे, है ना, आप बहुत अच्छे, मतलब जो भी स्तुति गानी है गाएंगे। पर जो बड़े व्यक्ति होते हैं ना, जो ऑफिशियल होते हैं और अथॉरिटी होते हैं, उनको ये अपनी महिमा पसंद नहीं है। वो कहेंगे भाई काम की बात करो, क्या चाहते हो? सीधी बात, काम की बात, मेरी वो मस्का नहीं चाहिए। मस्का लगाते ना, कहते ना मस्का लगाना, तो वो नहीं चाहिए। तो हम भगवान की इतनी स्तुति गाते 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 फिर कुछ मांग लेते हैं, तो ये क्या हो गया है? ये क्या हो गया? मक्खन लगाना। तो बाबा कहते वो मक्खन नहीं चाहिए, लेकिन बाबा की महिमा गाते गाते, उनके गुणों का गायन करते 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 उसमें खो जाओ। इसलिए हम लोग क्या कहते हैं कि राजयोग क्या है? राजयोग माना आत्मा समझकर परमात्मा को याद करना। तो एक याद है जो हम करते हैं, दूसरी याद वो है जो याद आती है, और तीसरी याद है जो सताती है। तीन प्रकार की यादें होती है। एक याद है जो हम करते हैं, कुछ काम होता है, किसी को हम याद करते हैं, है ना, आपस में बात कर रहे हैं, मान लो आप तो कोई व्यक्ति को हम याद कर रहे हैं, हम कहते हैं अगर वो व्यक्ति होता तो ये काम सहज हो जाता होता। तो उस व्यक्ति को हम याद करते हैं उस प्रसंग के समय, और मान लो वो व्यक्ति उसी समय पहुंच जाता है, तो हम कहेंगे अच्छा वो आप आ गए, हम आपको अभी अभी याद कर रहे थे। तो वो पूछेगा क्यों याद कर रहे थे, क्या काम था? क्यों याद कर रहे थे, कोई काम था तभी याद कर रहे थे? तो वो स्वार्थ वाली याद है, काम है वो कर सकता है इसीलिए याद कर रहे हैं। पर दूसरी याद है जो आती है, जिससे स्नेह होता है उसकी याद आती है। वो याद आती रहती है, आती रहती है, तो याद आती है भाई आप बड़े खोए हुए लग रहे हो, कहते वो फलाने की याद आ गई। उसके कोई प्यार में खो जाता है, तो इंग्लिश में हम कहते हैं fell in love। बाबा कहते हैं वो fell in love माना गिरा, प्रेम में गिरा। fall in love माना क्या? वो प्रेम में गिरा। तो देह अभिमान के वश जो होगा, कोई देहधारी से प्रीत जोड़ी तो वो प्यार तो गिराएगा, लेकिन भगवान से अगर प्यार जोड़ा तो वो तो चढ़ाएगा, उड़ाएगा हा? तो इसीलिए फिर भी वो याद आती है। कैसे याद आती है? उनकी गुणों की याद आती है, उनकी कई बातें याद आती है। पर तीसरी प्रकार की जो याद है वो सताती है, वो वियोग की याद है। अब किसने शरीर छोड़ा, बच्चे ने शरीर छोड़ा, वो बच्चा इतना याद आता है, उस बच्चे को भूल नहीं सकते और वो याद सताती रहती है। तो सताने वाली याद तो बहुत दुखदाई है, आने वाली याद ये स्नेहमय याद है, करने वाली याद ये स्वार्थ की याद है। पर शिव बाबा की याद कैसी हो? केवल आने वाली हो या करने वाली हो, सताने की तो बात ही नहीं है। बाबा को सदा अपने साथ रखो, सताएगी क्यों याद। लेकिन चौथी प्रकार की याद है, कौन सी? चौथी भी कोई याद है? चौथी प्रकार की याद है समाने वाली याद। बाबा का गुण गायन करते 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 उसमें खो जाओ, समा जाओ, समा जाओ। और इसी को ही भक्ति में कहते हैं ना, आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाए, वो अज्ञान का पर्दा हटे, आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाए। अब तो अज्ञान का पर्दा माना ये देह अभिमान, और ये देह अभिमान आत्मा का हटा, सब संबंध बाबा से जोड़े, तो ऑटोमेटिकली आत्मा शिव बाबा के गुणों में खो जाएगी। और इसलिए बाबा कहते हैं मांगो नहीं कुछ भी। वो साइलेंस पावर ऐसे अनुभव होते हैं जिसमें सब इच्छाएं पूरी हो जाती है, इच्छाएं समाप्त हो जाती है। इसलिए बाबा कहते हैं इच्छा मत रखो कुछ भी, अच्छा बनना है। इच्छाएं कई चीजों की इच्छाएं नहीं होती, लेकिन और इच्छाएं, वो भी तो इच्छाएं हैं। तो इन सब से परे जाकर उस साइलेंस पावर को हम अगर अनुभव करते हैं तो महसूस होता है कि सब शक्तियां आत्मा के अंदर आ गई। और कैसे वो दूर की आवाज हमें सुनाई देगी, आत्माओं की पुकार सुनाई देगी, क्या मुझे करना है, बाबा से ऐसे लिंक जुड़ जाएगी, निर्णय शक्ति बढ़ जाएगी, सर्व शक्तियां अनुभव होगी। वो साइलेंस पावर में अनुभव होती है, जो आज बाबा का वरदान था। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, केवल कहने तक नहीं, वो शक्तियां अनुभव हो और समय पर वो कार्य में ला सको। पर वो तब होगी जब वो साइलेंस पावर में जाएंगे। तो चलिए अब वो साइलेंस पावर का अनुभव करेंगे। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।
तो दीदी से आपको सुंदर मार्गदर्शन मिला, उसके लिए पुनः पुनः दीदी का एक हाथ हिलाकर धन्यवाद, शुक्रिया, आभार।